नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 यह है बोलिए अधुवेण आत्मना नाथा है न धर्मां न यसा है पुमान इहेता भूतदया सह शोच्य है अस्थावरै अपि ठीक है। इसके पूर्व एक श्लोक है थोड़ा उसे मैं पढ़ लेता हूं। श्री ऋषिर्वाच धर्मं वह श्रोतु कामेन वयं मे प्रत्युदाहृता एष वह प्रेमात्मानं त्यजन्तं सत्यं जाम्यहम्। परम साधु दधीची ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्मों की बातें सुनने के लिए ही अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह है आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। ओ ध्रुवेणात्मना नाथा यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यश पुमान न धर्म न यश पुमान इहे त भूत दया इहे त भूत दया सशोच्य स्थावरैरपि सशोच्य स्थावरैरपि यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यश पुमान इहे त भूत दया सशोच्य स्थावरैरपि ओ ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यश पुमान इहे त भूत दया सशोच्य स्थावरैरपि। उद्वेणात्मनाथ न धर्म न सपुमान हितभूत दया स्वच्छावरपि स्थावरेपि या है जो कोई अधुवेड़ा अस्थाई आत्मना शरीर से नाथा है हे देवो ना नहीं धर्मम धार्मिक नियम ना नहीं यशा है कीर्ति पुमान मनुष्य इहेता के लिए प्रयत्न करता है भूत दया जीवों के लिए दया से सह हुआ है सोचा है सोचनीय अस्थावरय है जड़ जीवों के द्वारा अपि भी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद हे देवो जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है वह है निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। पुनरावृत्ति करें हे देवो जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। प्रिंटिंग करने में कहीं कहीं गलती हो गई, जैसे देवो लिखा गया देवो होगा है ना, फिर देवो उच्चारण में कभी गलती हो जाती है। तात्पर्य इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के छह गोस्वामियों ने एक आदर्श उपस्थित किया है। जहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय 34 श्लोक में कहा गया है कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सूर्यप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद रैण्यम माया मृगम दैत एवसितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करते हैं जिनका हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यहाँ तक कि अपनी नित्य संगनी को भी त्याग दिया जिनकी पूजा स्वर्ग के वासी तक करते हैं। वे माया के द्वारा मोहग्रस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है नागरिक के आत्महत्या, किंतु संन्यास प्रत्येक ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अत्यंत तरुणी एवं सुंदरी थीं और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थीं। उनका पारिवारिक जीवन इतना मधुर था कि देवता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर संन्यासी का जीवन बिताया। इसी प्रकार उनके 6 गोस्वामी समाज में अच्छे पदों पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्री निवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा त्रुणम अशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुक्षवत भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन कंथाश्रित। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। उन्होंने भिक्षुकों का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा फटी गुदड़ी यानी कंथा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हों। भूत दया माया मृगम दैत एपसितम तथा दीन गणेश कौ करुणया, इन शब्दों से यही अर्थ निकलता है। ये शब्द उन लोगों के लिए जो मानव समाज को उठाना चाहते हैं अत्यंत सार्थक हैं। मनुष्यों को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामी तथा उनसे भी पूर्व महर्षि दधीची के आदेशों का अनुकरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हों। क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देकर मनुष्यों को चाहिए कि उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। अंततः इस शरीर को नष्ट होना है, अतः मनुष्यों को चाहिए कि इसका उत्सर्ग धर्म फैलाने के शुभ कार्य में करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रसंग चल रहा है देवताओं तथा वृत्रासुर का युद्ध। आप सभी श्रवण कर चुके हैं कि जब इंद्र ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया तो उसका बदला लेने के लिए अर्थात इंद्र को मारने के लिए वे एक यज्ञ किए और उस यज्ञ के द्वारा एक बहुत विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। दक्षिणाग्नि याहुति में मंत्रों में कुछ त्रुटि हो गई थी या देर से उच्चारण किया गया था जिसके चलते एक असुर उत्पन्न हुआ जिसको हम वृत्रासुर कहते हैं। वृत आवृत जो पूरे संसार को ढक ले, आकाश को ढक ले, सबको निगल जाए, वो है वृत्रासुर। वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो उसके शरीर से तेज बढ़ने लगा और उससे देवताओं की शक्ति घटने लगी। तो देवता बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के वे भगवान के पास गए, भगवान के चरणों में गए, शरण में गए, भगवान की स्तुति किए। स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें उपाय बताया कि वित्रासुर का वध करने के लिए आप लोग दधीचि ऋषि के पास जाएं, नारायण कवच के प्रभाव से उनका शरीर सुदृढ़ हो गया है, बलिष्ठ हो गया है, वे तपस्वी मुनि हैं, वे दानी हैं, और उनके हड्डी से जो वज्र बनेगा और वह वज्र मेरी शक्ति से परिपूरित होगी होगा और उसी वज्र के द्वारा वित्रासुर का वध किया जाएगा। इसके लिए देर नहीं करना चाहिए, शीघ्र दधीचि ऋषि के पास आप लोग चाहिए। भगवान के आदेशानुसार देवता इंद्र वरुण चंद इत्यादि ये सब दधीचि ऋषि के पास गए और दधीचि ऋषि के पास जाकर के देवताओं ने उनको प्रणाम किया और कहा, देवताओं ने कहा दधीचि ऋषि की प्रशंसा किए कि आप पवित्र आत्मा हैं, तपस्वी हैं, परोपकारी हैं, आप यदि अपने शरीर का दान करते हैं तो उस शरीर के हड्डियों से हड्डी से एक सुंदर वज्र तैयार होगा जिसे महान असुर का नाश होगा और जगत का कल्याण होगा। धर्म की बात देवता कहें तो दधीचि ऋषि सुनकर देवताओं की वाणी को प्रसन्न हो गए। देवताओं की एजिटिज यही वाणी थी, देवताओं के शब्दों पर ध्यान से देखें, हे ब्रह्मन, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हे ब्रह्मन, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती, ये सब कुछ यहां तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं जो पवित्र आत्माएं हैं, जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह है याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। देवताओं के इस प्रकार वाणी को सुनकर के दधीचि ऋषि ने कहा जो प्रस्तुत श्लोक में है, परम साधु दधीचि ने कहा कि मैं तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है, पहले शरीर नहीं दिए, पहले मांगे तो स्वीकार नहीं किए, जब वे लोग धर्म की प्रशंसा किए, परोपकार शरीर की प्रशंसा किए, पवित्र आत्मा की प्रशंसा किए, तब दधीचि जी तैयार हो गए। अब यदि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ेगा। हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है, दधीचि ऋषि की वाणी है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का या कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। बहुत सुंदर शब्द है दधीची। शब्दों पर ध्यान दीजिए। दधि माने दही, और दही माने एक कपड़ा भी होता है। दधीची का अर्थ होता है विशेष। आप शब्दकोश डिक्शनरी में देख लीजिए, दधीची का अर्थ होता है विशेष। विशेष क्या चीज है? जो विशेष रूप से अपने शरीर को त्यागने की कला को जानता हो उसका नाम है दधीची। भाई विशेष, विशेष मतलब विशेष का अर्थ है जो भगवान को चिंतन करते हुए इस शरीर को त्याग दे, जिसे शरीर को छोड़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उसे हम दधीचि ऋषि कहते हैं। वे थे दधीचि ऋषि, जो ब्रह्मा के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था। घोड़े के मुख से ये अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए थे, इसलिए इनका एक नाम अश्वशिरा भी है। ये बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। परोपकारी थे। एक समय दधीचि ऋषि के पास इंद्र गए, और जाकर के प्रणाम किए और कहे कि हम आपसे ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं, आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। दधीचि ऋषि ने इंद्र का स्वागत किया और कहा, आप मेरे अतिथि हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो इंद्र ने कहा, मुझे ब्रह्म विद्या का है उपदेश दीजिए। दधीचि ऋषि का एक कथन था कि ब्रह्म विद्या का उपदेश भोगी व्यक्ति के लिए नहीं है, तपस्वी व्यक्ति के लिए है। इंद्र ने कहा, आपने वचन दिया है। दधीचि ऋषि ने विचार किया कि मैंने वचन दिया है उपदेश देने का, अवश्य मैं इन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश देने से पहले वे भोग आदि की निंदा करने लगे, स्वर्ग लोक की भोगों की निंदा करने लगे, इंद्र की भी वर्तना करने लगे, और भोगों की निंदा करते हुए वे इंद्र को एक कुत्ता सा सिद्ध किए। वास्तव में अगर देखा जाए इतिहास में, इंद्र का जो स्वभाव है वह कुटिलता का स्वभाव है, कायरता का स्वभाव है, कामी का स्वभाव है और स्वार्थी का स्वभाव है। मतलब इंद्र कामी है, कुटिल है, स्वार्थी है और डरपोक भी है। कहे कि तुम्हारा स्वभाव कुत्ता जैसा है, कुत्ता जैसे हमेशा खाने में लगा रहता है वैसे ही तुम भोग भोगने में लगे रहते हो। जब कुत्ता सा सिद्ध किए, मतलब इंद्र को कुत्ता बना दिए अपनी बातों से, तो इंद्र को बहुत दुख लगा और इंद्र दधीचि ऋषि को मारने का प्रयत्न करने लगे। फिर भी उस समय तो वे नहीं मारे और कहे कि मेरे भोगों की निंदा करते हुए मुझे आप उपदेश नहीं दे रहे हैं, तो सुनिए, यदि आप किसी को उपदेश देंगे तो उसी समय मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जब मुझको नहीं उपदेश दिए तो किसी को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर क्रोधित होकर के इंद्र दधीचि ऋषि के पास से चले गए और दधीचि ऋषि ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेना। इंद्र के लिए कहा गया है, रामायण में भी वर्णन है कि सुख हार ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छीन लेई जन जान जड़ तिमिसुर पति ही न लाज। जैसे कुत्ता सूखे हड्डी को लेकर के भागे और ये सोचे कि कहीं सिंह यहां करके मेरा हड्डी छीन न ले। अब बताइए जो शेर है, जो सिंह है, कभी कुत्ता का हड्डी छीन सकता है? फिर बलिष्ठ होता है वो, जिसे स्वयं शिकार करता है और स्वयं उसे ग्रहण करता है। किसी कुत्ते का जूठन वो नहीं खा सकता है, लेकिन कुत्ता को डर है, कुत्ता इतना डरपोक होता है, डर है कि कहीं सिंह यहां करके मेरे हड्डी को न छीन ले। उसी प्रकार से इंद्र डरपोक होते हैं, जैसे कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तपस्या करता है, तो इंद्र को डर हो जाता है कि कहीं ये तपस्वी मेरा इंद्रासन न ले ले। इसलिए इंद्र को कायर, कामी और कुटिल कहा गया है। तो दधीचि ऋषि उनको कुत्ता बना दिए, तुम्हारा स्वभाव कुत्ते का है, तुम भोगी हो। और वास्तव में इंद्र कामी है। इतिहास बताता है जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वैसा उसका इतिहास बनता है। इंद्र ने देखिए अहल्या के साथ छल किया, गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके अहल्या के साथ संभोग किया, कामी नहीं तो क्या? कुटिल, कोई भी तपस्या करते हैं किसी अप्सरा को विदा कर देंगे, जाओ इनका तपस्या भंग कर दो, जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कर दिए, मेनका को विदा कर। और जो तपस्वी स्त्री का संग कर लेगा तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है और उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो इंद्र का राज, इंद्र का जो राज्य स्वर्ग है, सुर्गासन है, वो जस का तस बना रहता है। अपने पद के लिए इंद्र कुछ भी कर सकते हैं, माया फैलाते हैं, तो इनको डर होता है कहीं मेरा इंद्रासन न ले। तो दधीचि ऋषि ने कहा तुम डरपोक हो, तुम भोग में केवल लगे रहते हो, तुम्हारे लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं है। अब आगे देखिए, समय में परिवर्तन होता है। अश्विनी कुमार जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, जो शिल्प कला में, शिल्प कौशल में बहुत प्रवीण हैं, जो संजीवनी विद्या को जानते हैं, मरे हुए को जिला देते हैं, वे हैं अश्विनी कुमार। उनको पता चला कि इंद्र को दधीचि ऋषि ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिए, तो वे लोग आ गए ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए। दधीचि ऋषि ने कहा कि यह ब्रह्म विद्या का उपदेश वैराग्यों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। अगर तुम लोग वैराग से युक्त होकर के श्रवण करोगे तो मैं तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा। अश्विनी कुमार तैयार हो गए और दधीचि ऋषि उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए। पुनः अश्विनी कुमारों ने कहा यदि आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे और यदि इंद्र को मालूम हो जाए तो वे आकर के आपका वध कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? दधीचि ऋषि ने कहा उसका भय मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी आसक्ति शरीर में नहीं है। तो इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा हम मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं, हमें कौशल करते हैं, मरे हुए को भी जिला देते हैं, अगर किसी का शरीर धड़ से अलग हो जाए तो उसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो ऐसा उपाय करते हैं कि आपका सिर काटकर इस घोड़े के सिर में जोड़ देते हैं और घोड़ा का सिर काट करके आपके धड़ में जोड़ देते हैं। तो आप घोड़े के सिर से हम लोग को उपदेश दीजिए और जब इंद्र आएंगे
आपका वध करेंगे तो घोड़ा का सिर रहेगा, तो घोड़ा का सिर हम फिर घोड़े में जोड़ देंगे और आपका सिर लाकर के पुनः आपके धड़ में जोड़ देंगे, इसलिए दोनों जीवित के जीवित रहेंगे। इस पर दधीचि ऋषि तैयार हो गए और ऐसा ही हुआ। ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दीजिए, भगवान के बारे में उपदेश। तब इंद्र आए और अपने वज्र से दधीचि ऋषि का गला काट दिए। अश्विनी कुमारों ने झट से दधीचि ऋषि को सिर को घोड़े के सिर से हटाकर उनके धड़ से जोड़ दिए और वे पुनः जीवित हो गए और उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए। तो दधीचि ऋषि का एक नाम है अश्वशीरा। तो याद रखें, प्रस्तुत श्लोक में दधीचि जी ने कहा कि हे देवो सुनो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक कार्य के लिए या कीर्ति के विस्तार के लिए अपने नश्वर शरीर का बलि नहीं करता है, तो वह व्यक्ति धिकारने योग्य है, अर्थात शरीर को परोपकार के लिए दान कर देना चाहिए। शरीर को परोपकार में लगाना है, परोपकार में लगाना इस मानव शरीर का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। अब इससे बड़ा दूसरा कोई उपकार नहीं है। जैसे दधीचि जी ने अपने शरीर को एक असुर का वध करने के लिए देवताओं को दान कर दिए। दधीचि ऋषि एक दानी ऋषि थे जिनकी शरीर में आसक्ति नहीं थी, परोपकार के लिए अपने शरीर को त्याग दिए। रामायण में वर्णन है, सीबी दधीचि हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सीबी इतिहास में नाम आता है, भागवत में इनका नाम आया है, शुद्ध गोस्वामी ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने गिनाया है। सीबी दधीचि हरिचंद नरेसा, ये सब ऐसे राजा थे इस भूमंडल पर जो अपने जो शरीर के लिए, जो परोपकार के लिए अपने शरीर को दान कर दिए। महाराज सीबी जो सिंदर के पुत्र थे, सोमवंश के राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, महाराज सीबी बहुत बड़े दानी थे, परोपकारी थे, उपकारी थे। इनके गुणों की परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से देवराज इंद्र और अग्नि दोनों आए, दोनों पक्षी का वेश धारण किए, इंद्र बाज बने और अग्निदेव कबूतर बने। कि चलो आज हम महाराज सिबी की परीक्षा लेते हैं, एक किस प्रकार के दानी हैं, अपने शरीर का दान बलिदान करते हैं कि नहीं। आए बाज बनकर के इंद्र ने कबूतर पर आक्रमण किया, कबूतर भागा। उस समय महाराज सिबी राज सिंहासन पर विराजमान थे, आकर के उनके गोद में गिर पड़ा और बाज ने आकर कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे खाकर के ही मैं संतुष्ट होऊंगा, इसलिए आप इस कबूतर को मुझे दे दीजिए। महाराज सिबी ने कहा, मैं शरणागत की रक्षा करता हूं, मैं शरणागत रक्षक हूं, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसे कदापि दूसरों को नहीं दे सकता। वैदिक शास्त्रों का ये नियम है, भगवान भी का भी ये नियम है, भगवान की जो शरण में जाता है भगवान उसे नहीं त्यागते, भगवान शरणागत वत्सल है। इसलिए ये भी व्यक्ति मेरे, ये भी पक्षी मेरे शरण में आया है, शरणागत ये भी शरणागत है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। हाँ, इसके बदले में यदि आप जो चाहे सो मांग सकते हैं, वो मैं दे सकता हूं, आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। तब अग्निदेव ने कहा, तब बाज ने कहा, इंद्र ने कहा, आप अपने दाहिने शरीर का मांस काट करके इस कबूतर के बराबर मुझे दान कीजिए। तो महाराज सिबी एक तराजू मंगाए और एक तरफ कबूतर को रखे और एक तरफ अपने दाहिने जांघ का मांस अपने हाथों से काट करके कबूतर के साथ तौलने लगे। तौले तो कबूतर का पलड़ा भारी रहा। जब देखे कि कबूतर का पलड़ा भारी होता जा रहा है, तो स्वयं महाराज सिबी उस पलड़े पर चढ़ गए, मैंने अपने शरीर को निछावर कर दी कबूतर की रक्षा के लिए। उसी समय देवता वहां पर प्रकट हो गए और महाराज शिवी की प्रशंसा किए। महाराज शिवी ने पूछा कबूतर से, आप कौन हैं? तो अपना परिचय दिए कि मैं अग्निदेव हूं। कह वे कौन थे? बाल तो चले गए। क्योंकि वे इंद्र थे। जब प्रसन्न हो गए कबूतर, जब प्रसन्न हो गए उसकी रक्षा हो गई, तो कबूतर ने आशीर्वाद दिया, अर्थात अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, ये जो कटा हुआ आपका जांघ है ये बिल्कुल भर जाएगा और सुनहला हो जाएगा, और इस जांघ से सुगंध निकलेगी, और इसी जांघ से एक पुत्र भी उत्पन्न होगा जिसका नाम कपोत नामा रखा जाएगा। महाराज शिवी का शरीर बिल्कुल सुनहला हो गया, उनके शरीर से सुगंध निकलने लगी। देखिए यह है दान का प्रभाव। महाराज शिवी रक्षा किए कबूतर की, माने यह जो शरीर है रक्षा करने के लिए है, इस शरीर से परोपकार करना चाहिए। और हरिचंद भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिए, स्वयं अपने हाथों डोम के हाथों बिक गए और धर्म की रक्षा किए, जिन्हें सत्यवादी हरिचंद कहा जाता है, जिनको स्वर्ग में आसन मिला। अंत में विश्वामित्र जी प्रसन्न भी हो गए और सब कुछ लौटा दिए। व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। श्री वेद व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, अठारहों पुराणों में व्यास के दो वचन हैं, क्या? परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और एक दूसरे जीवों को दुखी करना सबसे बड़ा पाप है। तो परोपकार करना चाहिए, जैसे दधीची ऋषि, महाराज शिवी, हरिचंद, ये परोपकार के लिए अपने शरीर को निरछावर कर दिए, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या में वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिए, अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को त्याग दिए, ये 24 वर्ष के थे और विष्णु प्रिया 16 वर्ष के थी, युवा अवस्था में त्याग करके चैतन्य महाप्रभु ने जगत के कल्याण के लिए संन्यास ले लिए। चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस भूमंडल पर रहे, 24 वर्ष तक तो जगन्नाथपुरी में रहे, 6 वर्ष तक दक्षिण भारत में प्रचार किए और 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर के जगत को शिक्षा दिया कि प्रत्येक गृहस्थ का एक धर्म होता है कि भगवान के प्रचार प्रसार के लिए अपने शरीर को हरे कृष्ण आंदोलन में समर्पण कर देना चाहिए। भारत भूमित हिला मानुष जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमर अज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। ये मेरे गुरु का आदेश है कि मानव शरीर से उपकार करना चाहिए। कैसा उपकार? सबसे बड़ा उपकार है कि व्यक्ति को वैष्णवी और वैष्णव बना दीजिए, ताकि उसका इस लोक में और परलोक में दोनों जगहों पर उसका जीवन सुखमय हो। अगर किसी को परोपकार करके वैष्णव और वैष्णवी नहीं बनाते हैं तो उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम सभी भाग लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी भाग लिए। आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि विदेशों में जाकर के प्रचार प्रसार किए, अपने शरीर को भगवान के लिए त्याग दिए, वे भी अपने पत्नी को पुत्रों को त्याग दिए, किसके लिए? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान का ज्ञान देने के लिए परोपकार में लगाया। और वास्तव में आप लोग भी हरे कृष्ण आंदोलन में जितने भी वैष्णवी और वैष्णव हैं वे सौभाग्यशाली हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं कि वे भी अपने जीवन को अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ परोपकार में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह है मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य। भगवान श्री राम जी को भी देखिए, भगवान श्री राम भी अपनी पत्नी को त्याग दिए, भाइयों को भी त्यागे। त्याग भगवान का एक ऐश्वर्य है, यह जो शरीर है नश्वर शरीर है, एक न एक दिन तो नष्ट होगा ही। इसलिए इस नश्वर शरीर से अधिक हो सके हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। और चेतन महाप्रभु के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि महाप्रभु के जितने भी पार्षद हुए, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये सभी एक राजघराने परिवार में जन्म लिए थे, उच्च कुल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए, परोपकार करने के लिए उस मंत्री पद को त्याग दिए और भक्ति का प्रचार प्रसार किए। जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आप सभी जानते हैं कि बंगाल के राजा हुसैन शाह के मंत्री थे श्री सनातन गोस्वामी, जो प्रधानमंत्री थे, जिन्हें साकर मलिक और श्री रूप गोस्वामी जी को दबीर खास के नाम से पुकारा जाता था। ये पदवी थी उनकी, मुसलमानों की अरबी भाषा में पदवी होती थी। प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक राजा होता है, जिसे हुसैन शाह राजा था, उसके अंदर प्रधानमंत्री का पद था सनातन गोस्वामी को। प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं होता, राजा के अंदर प्रधानमंत्री होता है। हुसैन शाह के अंदर थे, बहुत बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जब इन्हें संग प्राप्त हुआ तो दोनों भाई अपने पद को त्याग करके परोपकार में लग गए। और देखिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जितने भी वर्तमान आचार्य हैं, हिज होलनेस श्री जयपताका स्वामी महाराज और हिज होलनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलनेस श्री राधानाथ गोस्वामी महाराज, श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जितने भी महाराज हैं, आप देखिए सभी महाराजों को, हिज होलनेस गिरिराज स्वामी महाराज, जो बहुत संपन्न परिवार में जिनका जन्म हुआ था, और सबको त्याग करके वे लोग भगवान के प्रचार प्रसार में लग गए। अपने शरीर को हरे कृष्ण आंदोलन में बिल्कुल न्यौछावर कर दिए। और उन्हीं के शिष्यों में से हम सभी हैं जो आज यहां पर मौजूद हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। तो दधीची ऋषि कह रहे हैं कि इस मानव शरीर से परोपकार करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मानव शरीर प्राप्त करके केवल देह गेह में आसक्त रहें, केवल अपनी पत्नी और बच्चों को ही पालन पोषण में रहें। इस प्रकार जो केवल देह गेह में आसक्त रहता है और परिवार का पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाता है। उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जाती है, भोगी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जाती है, त्यागियों की प्रशंसा की जाती है। वैष्णवों के चरण में दुनिया क्यों गिरती है, लोग क्यों प्रणाम करते हैं, आपकी गेरुआ कपड़े देख करके लोग प्रणाम करते हैं, ये त्यागी हैं, वैरागी हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए दिया है। आपके त्याग को देखकर, आपकी भक्ति भावना को देखकर, क्या भगवान के प्रचारक हैं, वे लोग झुक जाते हैं। प्रचार करना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए, योगी होना चाहिए, माने भक्त होना चाहिए। देह गेह में जो आसक्त रहते हैं वैसे व्यक्तियों को धिकारा गया है। दधीची ऋषि कहते हैं जो धर्म कार्य के लिए अपने शरीर को बलिदान नहीं देता है, वह व्यक्ति, वह जो प्राणी है, वह धिकारने योग्य है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म तेमर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न भक्ति है, वे प्राणी इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मरे हुए हैं, जिन्हें से उन्हें कोई फायदा नहीं है, वे केवल भार स्वरूप हैं। जैसे मृग घास चरता रहता है, वैसे वे लोग केवल खाते पीते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, धिक्कारने योग्य शरीर है। और इस भूमंडल पर वास्तव में वे मानव सौभाग्यशाली हैं, प्रशंसनीय हैं, जो हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेकर के भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहने का भाव है कि श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी उच्च पद पर आसीन थे, लेकिन उन पदों को त्याग करके सीधे भक्ति का प्रचार प्रसार किए, सर्वोच्च धर्म का प्रचार प्रसार किए। उन्हीं की बताए हुए मार्ग में, आज उन्हीं की परंपरा में हम सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रीपाद जीव गोस्वामी जो अनुपम जी के पुत्र थे, त्रिभुव गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जिनके एक और भाई थे अनुपम जी, उनके पुत्र थे श्री जीव गोस्वामी जी, जो बहुत बड़े विद्वान थे भागवत के, इस सब प्रचार में लगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो उत्थम्पन परिवार के थे, धन में कोई आसक्ति नहीं, चेतन महाप्रभु के आंदोलन में भाग लिए। तो परोपकार के लिए हम सभी के सभी को यह मानव शरीर मिला हुआ है, इसलिए इस मानव शरीर से हम लोगों को उपकार करना चाहिए, प्रचार में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस शरीर से हम प्रचार नहीं करेंगे, ऐसे भी देखिए, यह शरीर तो एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा, दधीची ऋषि का यही कथन है। अगर हम परोपकार के लिए दान नहीं देंगे तो इसका एक न एक दिन तो अंत होगा ही, इसलिए परोपकार के लिए हमें दान कर देना चाहिए, मतलब शरीर में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। दधीची ऋषि के प्रसंग से, दधीची ऋषि की जीवनी से एक शिक्षा मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को शरीर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। जबरदस्ती शरीर को घसीटकर भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कवियों ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि वह देह नहीं कब हूं जिसने जग में प्रभु का जय किया ही नहीं, वह टूट पड़े रसना जिसने हरि नाम सुधा बरसाया नहीं, ये फाट पड़े प्रभु का जिसमें मन मोहन रूप समाया नहीं, यदि रक्षित माधव को पाया नहीं तो इस जीवन में कुछ भी कमाया नहीं। बहुत सुंदर इस कविता का भाव है, वह देह नहीं कब हो जिसने जग में प्रभु काज किया ही नहीं, वह शरीर शरीर नहीं है जो मानव शरीर प्राप्त करके इस जगत में भगवान का प्रचार प्रसार नहीं किया। धन्य है भारतवर्ष कि भारतवर्ष के एक पक्षी भी, एक पशु भी भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं और भगवान की सेवा में अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं। जैसे जटाऊ, जटाऊ को देखिए, जटाऊ ये पक्षी था, जटाऊ संपाति कथा सभी जानते हैं, जो जटाऊ महाराज दशरथ जी के मित्र थे, मां सीता की रक्षा करने में अपने पंख को कटवा डाले, भक्ति महारानी की रक्षा करने में अपने पंख को कटवा डाले, अपने शरीर को बलिदान दे दिए। भारत वर्ष का एक पक्षी भी भगवान की सेवा करने को तैयार रहता है तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं तैयार रहना चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पक्षी से और पशु से भी गए गुजरे हैं, धिकारने योग्य जीवन है। और जटाऊ अपने शरीर का प्रयोग मां सीता की रक्षा में किया और हा राम कहकर जटाऊ पुकार रहा था और भगवान श्री राम अपनी प्रिया को खोजते हुए जब जटाऊ जी के पास पहुंचे तो उनके शरीर को अपने गोद में लिए, वो भगवान का नाम ले रहे थे और भगवान श्री राम ने कहा कि हे जटाऊ जी, कहिए तो मैं आपके शरीर को अचल कर दूं। जटाऊ जी ने कहा नहीं, इस शरीर से मुझे जो भी सेवा करना था प्रभु मैंने सेवा कर लिया, अब हम आपके धाम जाना चाहते हैं। जटाऊ हा राम कहकर शरीर त्याग दिया और पार्षद बनकर वैकुंठ धाम चले गए। जीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनुपा। भगवान का नाम लेने से याद रखिए शरीर में एक अद्भुत चमत्कार होता है। जब मरते समय कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो यह जो अस्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है ये दोनों आवरण हट जाते हैं और जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। भगवान का ये वचन है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन करने से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जटाऊ जी भगवान का दर्शन किए, नाम लिए, वे अपने वास्तविक स्वरूप में हो गए, शरीर को त्यागे और पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया। धरी हरि रूपा मतलब भगवान के पार्षद बन गए, शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित उनका शरीर हो गया, दिव्य शरीर, सुगंधित शरीर, आभूषणों से सुसज्जित, पीताम्बर से सुसज्जित और विमान पर चढ़ करके वैकुंठ चले गए। नाम देखिए, भगवान का प्रचार किए, भगवान की सेवा किए, आज इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे भी प्रचार करते, जितने भी बंदर भालू थे सब भगवान की सेवा किए। भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए हनुमान जी लंका में गए। रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगवा दिया, अपमानित किए, लंकावासी हनुमान जी पर थूकते थे, लेकिन अपमान सहकर के भी हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिए, भगवान का प्रचार किए। जाके रति काल डराए, जोसुर असुर चराचर खाई, तासो वैर कबौ नहीं कीजिए, मोरे कहे जान की दीजिए। जो कालों को भी काल भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, उनके शरण में जाइए और मां जानकी को लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आप अपने पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। रावण अहंकारी था, अहंकार विमूढ़त्वा कर्ताहमिति मन्ये थे, नहीं माना, अंत में नष्ट हो गया, मारा गया। लेकिन हनुमान जी तो प्रचार प्रसार किए, अपमानित हुए लेकिन अपमान से हनुमान जी नहीं डरे। नमाचार्य हरिदास ठाकुर जी अपमान से नहीं डरे। आप सभी जानते हैं कि 22 बाजारों में चांद काजी ने इनको पिटवाया था, हैं? 22 बाजारों में घुमा करके इनके ऊपर वार किया था, प्रहार किया था डंडों का, लेकिन फिर भी हरिदास जी ने अपना हरिदास जी ने प्रचार नहीं छोड़ा, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। श्री नित्यानंद प्रभु के सिर को मधाई ने फोड़ दिया, फिर भी वे हरिनाम को नहीं छोड़े, उल्टे वे उन लोगों को भक्त बना दिए। अपमानित होकर के भी, कठिनाइयों को सह करके भी, मार खा करके भी लोगों को भक्त बना दिए। यह है हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। और वैष्णव का सबसे बड़ा अस्त्र है त्रिणादपि सुनी चेन त्रोरपि सहे सुना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदाहरी। मार सह लीजिए, अपमानित हो जाइए, लेकिन उसको वैष्णव बना दीजिए, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म के लिए याद रखिए कष्ट सहना चाहिए, प्रचार में बहुत सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को, उन कठिनाइयों को सहना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा हिझोले सचालपाद जी को, श्री जयपत्ता का स्वामी महाराज को, एक व्यक्ति ने गले पर प्रहार किया था, गला काट दिया था, देखिए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो नशे बच गई थी, हैं? जिसके प्रभाव से फिर बाद में भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हो गए। मार साकर के भी आज भी देखिए, आज भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रुग्ण अवस्था में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कठिनाइयों को सह करके। वैष्णव जो होते हैं वे कठिनाइयों को सह करके प्रचार प्रसार करते हैं। प्रभुपाद जी का यही कथन था, मरते दम तक प्रचार करते जाओ, कठिनाइयों को सहो, दुखों को सह लो, लेकिन प्रचार का कार्य बंद मत करो। यह शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा, जबरदस्ती इसको घसीटकर भगवान की प्रचार प्रसार में लगाओ, इसी में इस शरीर की सार्थकता है और सफलता है, नहीं तो ऐसे यह शरीर धिक्कारने जोग है, किसी काम का नहीं है, ऐसे ही जल करके राख हो जाएगा। तो जो न तरे भव सागर नर समाजय सपाय सोकृत निंदक मंद मते आत्मा हने गति जाय।
जो मानव शरीर को प्राप्त करके भवसागर से नहीं तारा और भगवान का प्रचार प्रसार करके भवसागर से लाखों प्राणियों का उद्धार नहीं किया तो वह प्राणी कहते हैं कि संसार में कृतज्ञ है, अर्थात जो किए गए उपकार को नहीं जानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, वह निंदनीय है। आत्मा हन गति जाए, उस व्यक्ति ने आत्मा को हनन किया। इसे आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, लेकिन आत्मा हन गति जाए का अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को अधोगति में डाल दिया जिसने प्रचार प्रसार नहीं किया। तो व्यक्ति को कृतज्ञ नहीं, व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी सुविधा प्रदान किया है, हमारे वर्तमान आचार्यगण जो परिश्रम करके मंदिर बना रहे हैं, जिसमें हम सभी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त करके भी जो प्रचार प्रसार नहीं करेगा तो वह वैष्णव वास्तव में धिकारने योग्य है। त्याग, शरीर को बलिदान कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो निद्रा को नहीं त्याग सकता है, जो आलस्य को नहीं त्याग सकता है, वो क्या प्रचार प्रसार करेगा। हम लोग देखते हैं, याद रखिए ये प्रचार प्रसार का केंद्र है। हम लोग देखते हैं लोग मंगला आरती में नहीं आते हैं, सोए रहते हैं। जो निद्रा को नहीं त्याग सकता है, खा पी करके स्वस्थ है, प्रसाद किसी चीज की कमी नहीं है, फैसिलिटीज है सब कुछ, लेकिन मंगला आरती गुरु पूजा में नहीं आते हैं, निद्रा में मस्त रहते हैं, निद्रा का त्याग नहीं कर सकते, आलस का त्याग नहीं कर सकते, तो किस लिए आप हरे कृष्ण आंदोलन में हैं? आलस निद्रा जम भाई, तीनों काल के भाई। निद्रा को त्याग कर मंगला आरती में आना चाहिए, याद ये है तपस्वी का गुण। दूर दूर से लोग आ जाते हैं, लोखंडवाला से कहां कहां से लोग आ जाते हैं, और मंदिर में रह करके अगर कोई वैष्णव न आए मंगला आरती में, यह उसका दुर्भाग्य है। और आने लायक है, सोचिए ये ब्रजहरी प्रभु के हमारे जो टेम्पल हिजोलनेस ब्रजहरी प्रभु जो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी कृपा प्रसाद है, याद रखिए उनकी दया है जिसके चलते आप सब रह रहे हैं। अगर जो मंगला आरती ना आए, अगर कड़क एक्शन लिया जाए तो आपको यहां से भागना पड़ेगा कि ऐसे आलसी का यहां कोई जरूरत नहीं है, कैसे प्रचार प्रसार होगा। इसलिए एक्टिविटी होनी चाहिए, शरीर में जागृति लाइए, जागृति ला करके प्रचार प्रसार करें, और प्रचार प्रसार के लिए इस शरीर को बलिदान कर देना चाहिए। इसी के लिए हम मानव शरीर मिला हुआ है, जैसे दधीची ऋषि ने अपने शरीर को बलिदान कर जिनके हड्डी से एक वज्र बना, उस वज्र से वित्रासुर का वध हुआ। आसुरी वृत्ति को बंद कर दीजिए, निद्रा आलस को भगा दीजिए, जागृति लाइए और प्रचार प्रसार कीजिए, इसे अपना भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। तो प्रस्तुत श्लोक से यही सिद्ध होता है कि मानव शरीर को प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए, और जो प्रचार प्रसार में लगाते हैं उन्हें मनुष्य का शरीर सार्थक है, और जो प्रसार प्रसार में नहीं लगाते हैं उनका शरीर निरर्थक है, किसी काम का नहीं है, और वह शरीर बेकार में योग्य है। जारे देखा तारे करे कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको भक्ति का प्रचार कीजिए, भगवान नाम का उपदेश दीजिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी देखिए बड़ी सुंदर बातें हैं, हमारे जो गोस्वामी गण हैं ये वैराग्य वृत्ति से भगवान की भक्ति करते थे, और हम लोग तो यहां खा पी करके बिल्कुल मस्त रहते हैं, लेकिन गोस्वामियों का जीवन देखिए, सिखलाए हैं त्याग करना चाहिए, त्याग बहुत जरूरी है, कुसंगत का त्याग करना चाहिए, गंदी आदतों का त्याग करना चाहिए, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गोस्वामियों का त्याग देखिए, वृंदावन में रह करके श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी इस भक्ति करते थे। एक चीज ध्यान देने की बात है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रूप गोस्वामी ये दोनों भाई हैं, लेकिन श्री रूप सनातन, श्री रूप गोस्वामी का नाम पहले लिया जाता है सनातन गोस्वामी से। क्यों? श्री
पर सनातन गोस्वामी तो बड़े थे। श्रीपाद रूप गोस्वामी का नाम पहले इसलिए लिया जाता है कि पहले श्रीपाद रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई थी, बाद में सनातन गोस्वामी की। इसलिए हमारी वैष्णव परंपरा में है जो भक्ति में पहले आते हैं तो उनको पहले मान सम्मान दिया जाता है, ये परंपरा है। इसलिए श्रीपद रूप गोस्वामी का नाम पहले लिया जाता है। इसलिए वैष्णवों को सावधान रहना चाहिए, याद रखिए जो भी वैष्णव यहां आते हैं सीनियरिटी और जूनियरिटी पर, याद रखिए सीनियर वैष्णवों को हमेशा सम्मानित करना चाहिए। आप माल्यार्पण करते हो चाहे आरती दिखाते हो, परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कभी कभी पदाधिकारी लोग आपको शिक्षा देते हैं, आप आपकी डांट लगाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो बताते हैं तो सीखनी चाहिए इस बात को। मान सम्मान सीनियर वैष्णवों को देना चाहिए जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी को दिया गया है। ये वैष्णव परंपरा की एक लोक रीति है, लोकाचार है, सम्मानित करना चाहिए। अगर आप सम्मानित नहीं करेंगे तो आप अपराध कर बैठेंगे, अपराध हो जाता है, विचार करना चाहिए। शिक्षा मिलते ही से तो हमारे जितने भी गोस्वामी गण हैं वैराग वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे और भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। जैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी को देखिए, जब वृंदावन में रहते थे तो क्या खाते थे, वर्णन है, कभू कांदे कभू हासे कभू प्रेमानंदे भासे कभू भिक्षा कभू उपवास छेड़ा कांथा नेड़ा माथा मुखे कृष्ण गुण गाथा परिधान छेड़ा बहिर्वास कखनो वने रसाक अलवने करी पाक मुखे देई दुई एक ग्रास। वे फटे चिथड़े कपड़े पहनते थे, एक दो कवर खा लेते थे और बाकी समय में केवल भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेम में कभी रोते थे कभी हंसते थे, प्रेमानंद में बिल्कुल निमग्न रहते थे। ये हमारे गोस्वामियों का जीवन है। जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं ये सब सिद्ध आचार्य हैं जिनकी छत्र छाया में हम और आप पल रहे हैं। इतना खाने पीने को मिल रहा है, इतना प्रसाद मिल रहा है और फिर भी हम लोग मंगला आरती गुरु पूजा या प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है इस नियमों का पालन न करें तो हम सभी धिकारने योग्य हैं। इसमें हमारी प्रशंसा नहीं है, निंदा है। तो मानव शरीर को कहने का मतलब है, मन नहीं कहता है, सोने के बाद मन कहता है थोड़ा और सो लो, मन को डांटिए, मन बेस्या है, बेस्या के तुल्य है, बहुत चंचल है, उसको बुद्धि से डांटनी चाहिए, फटकार लगानी चाहिए, चल भगवान की सेवा में। और ये सौभाग्य की बात है कि वैष्णव सब एक साथ सोते हैं, एक दूसरे को जगा देते हैं। अगर अकेले रहे कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, सोए के सोए रह जाएंगे। इसलिए संघ में रहना चाहिए, संघ बहुत जरूरी है। ये हमारी मिशन का सबसे बड़ा सहयोग है, चैतन्य महाप्रभु का यही कथन है, साधु संघ, साधु संघ में रहना चाहिए। हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं इसलिए कि इस बात को बोलना बहुत जरूरी है। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन हम देखते हैं जो असीम कृष्ण प्रभु हैं उनमें एक बहुत बड़ा गुण है। आप देखोगे उनकी मंगला आरती और भी सभी सभी माने नियमों में बिल्कुल तैनात रहते हैं, उनका कभी मिस नहीं होता है। अपना टाइम से वो 3 बजे जग जाते हैं और सबको जगाते हैं। न रहने से कुछ कमियां दिख रही है, जगाने का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। एक जगाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। खाने पीने को खा पी के सोए रहना तो सब खाते हैं पीते हैं सोते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व संभालना एक बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल किसी में वैसा उत्तरदायित्व नहीं दिखाई दे रहा है जो कि जगा दे, समय से जग जाए और जगा दे, वो बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन याद रखें जो लीडर होते हैं उनको लीडर किस लिए बनाया गया है, उनकी अंतर क्षमता होनी चाहिए, अपना लीडरत्व दिखाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। जीव जाग गौरा चंद बोले, कब तक हम लोग निद्रा में सोए रहेंगे। जगिए और मंगला आरती में आइए। कहने का भाव यह है, जागृति लानी चाहिए। तो इस मानव शरीर से हम लोग परोपकार करें, और आप सभी वैष्णवी और वैष्णव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम है। ऐसे ही प्रचार प्रसार करते हुए जगत का कल्याण करें। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा? हाँ बोलिए प्रभु।
कृतज्ञ और कृतघ्न में क्या
फर्क? हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को जानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और कृतघ्न का मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं जानता है। आज हमारे आचार्यगण श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हैं, जो भी इतनी सुविधा हम लोग को प्रदान मिली हुई है, और इतनी सुविधा प्राप्त करके भी यदि हम नियमों का पालन न करें तो ये हमारी कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है। भगवान ने हवा पानी सब कुछ दिया है, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, और वैसे प्रभु का हम नाम न ले तो ये कृतज्ञता है। जो किए गए उपकार को नहीं जानता है, जो पिता पुत्र को पत्नी को सब कुछ प्रदान करे और वो पुत्र अपने पिता को जल मांगे तो जल न दे, उनकी आज्ञा का पालन न करे, तो वो कृतज्ञ पुत्र है, वो प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। इसलिए उसको कृतज्ञ कहा गया है जो आदेशों का पालन नहीं करता है, और जो आदेशों का पालन करता है उसको कृतज्ञ कहा गया है। समझ में आ गई? तो हम सभी भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान का आदेश है, जहां भी रहो वहां मेरा नाम लो। सप्तम कृत्यंतो माम यतंतश्च दृढ़ व्रत, नियमों का पालन दृढ़ता से करो, ये परम पिता का आदेश है। यदि हम ऐसा पालन नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ कहे जाएंगे। कृतज्ञ होना चाहिए, किए गए उपकार को जानना चाहिए। भगवान का हमारे प्रति कितना उपकार है, भगवान की हवा है, भगवान की पानी है, भगवान की धरती है, फ्री में हम सब ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन से जीवन है, और वैसे प्रभु को भुला देना ये हमारी कृतज्ञता है। बने प्रसन्नता के योग्य नहीं है, धिकारने योग्य है। और कोई? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। मेरा प्रश्न ये है कि आप जो प्रचार के बारे में बताए, ये तो गुरु के आज्ञा के अनुसार होता है। किसी को ड्यूटी ओवरशिप करता है, कोई यहाँ पे झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन साफ करता है, कोई माला गुनता है, कोई कीर्तन कर रहा है, ये तो प्रेसिडेंट के अनुसार, अध्यक्षता के हमारे मैनेजमेंट के अनुसार सेवा दिया गया है। कि कौन जाके बाहर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेवा कर रहा है ये भी तो प्रचार में आता है ना?
सब कुछ प्रचार है, बर्तन मांजना भी प्रचार है, पुस्तक वितरण करना भी प्रचार है, और जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, जो सीनियर वैष्णव गण हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आपको सेवा में संलग्न किए हैं, तो उनकी बातों को स्वीकार करनी चाहिए, स्वीकार करके सेवा करनी चाहिए। तो सब प्रचार है, याद रखिए। जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं ये भी प्रचार है, जो बुक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी प्रचार है, और जो बर्तन मांजते हैं वो भी प्रचार है। सेवा करना चाहिए। किसकी आप बर्तन मांज रहे? भगवान की। प्रताप रुद्र राजा भी भगवान की सेवा में झाड़ू मारते थे। इतनी आपका शरीर सार्थक है, पूजनीय है और वंदनीय है, ये सब प्रचार है। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु।
कृष्णा।
हरे कृष्ण।
परोपकार का मतलब है कि कृष्ण भावना प्रचार करने का है
जी।
अभी वृत्रासुर केवल असुर नहीं थे, वो भगवान का भक्त भी थे, बराबर?
वृत्रासुर?
हाँ,
वृत्रासुर के अंदर भक्ति थी।
भक्ति थी ना,
क्योंकि चित्रकेतु महाराज ही वृत्रासुर बने हुए।
हाँ, मेरा मतलब ये है कहने का, अभी ददेची महर्षि ने हड्डियां दान दिया
जी।
और इसमें थे वज्रायुध बना के वत्रासुर को, भक्त को मार डाल दिया।
हाँ।
तो भगवान का प्रचार कैसा होता है इसमें?
ये भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान ने खुद कहा है, क्योंकि असुर थे और उनके उनके तेज के प्रभाव से देवताओं की शक्ति घटने लगी, उनकी शक्ति कम होने लगी, और देवता भगवान के भक्त हैं, तो ये सब जो कार्य हुआ है भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है। और भगवान ने खुद कहा है कि उस वज्र में मेरी शक्ति निहित रहेगी, तब वो वृत्रासुर मारा जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं मारा जा सकता। लेकिन वृत्रासुर में भगवत भक्ति थी, क्योंकि वो पहले जन्म में भक्त थे,
तो इसलिए उनमें भगवत भक्ति थी और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किए हैं और इंद्र से भी अधिक उनकी प्रशंसा की गई है। फिर भी उस असुर योनि में भी वित्रासुर भगवान को वंदना किए, भगवान को प्रणाम करे, इसलिए वित्रासुर की जो जीवनी है सराहनीय है, प्रशंसनीय है। वो तो मंत्र में त्रुटि होने से भगवान की इच्छा से उनको वो शरीर मिला हुआ था। तो वित्रासुर की जीवनी से ये शिक्षा मिलती है कि असुर योनि में भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और वो करते भी हैं, द्वेष भाव से करते हैं। द्वेष भाव से उनका चिंतन होता है तो उनका भी कल्याण हो जाता है, उनका भी कल्याण हो ही जाता है अंत में। मतलब वित्रासुर एक स्पेशल भक्त थे भगवान के, राजा चित्रकेतु ही पार्वती जी के साप से शरीर को प्राप्त किए थे, फिर भी उसमें भगवत भक्ति थी, उसमें भगवान की स्तुति किए। तो आप कहना क्या चाहते हैं?
हरे कृष्ण।
उन लोगों के शरीर के माध्यम से भगवान शिक्षा दिलवाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु जी हो, शिव जी हो या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, यदि वो कोई त्रुटि करता है तो उनके माध्यम से भगवान जगत में शिक्षा दिलवाते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए कि इस प्रकार का सहनशील होना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो भगवान की इच्छा से ही इंद्र ने वित्रासुर का वध किया था। वो भी परोपकारी थे, इंद्र को तो वध कर सकते थे, निगल सकते थे, उनमें वो शक्ति थी, भगवान की कृपा से उनमें वो शक्ति थी, तो वो भी परोपकारी थे। वित्रासुर का श्लोक पढ़िए, कितना सुंदर श्लोक है, चार श्लोक बहुत सुंदर है, भगवान के प्रति वो समर्पण थे। परोपकार करने का मतलब है कि इस संसार में प्रत्येक जीव को वैष्णवी और वैष्णव बना दीजिए। रोटी कपड़ा जो देते हैं, भोजन वस्त्र है, ये भोजन वस्त्र भी हम लोग देते हैं तो भगवान का प्रसाद ही देते हैं, लेकिन ये सब नश्वर वस्तु है। लेकिन ऐसा भोजन दिया जाए कि जन्म जन्मांतर की जो भूख है, जो जीव 84 लाख जोनियों में भटक रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना कर रहा है, वह भूख समाप्त हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, भगवत धाम जाकर के जीव सदा के लिए सुखी हो जाए, और उसके लिए सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। इसलिए चेतन महाप्रभु का नाम है महाबदन्याय, नमो महाबदन्याय। महादान करना चाहिए और महादान में है भगवान का नाम। रोटी कपड़ा मकान ये तो सब तुच्छ वस्तु, ये तो ऐसे ही आपको मिल जाती है। सबसे बड़ा दान परोपकार है भगवान का नाम, नाम को दान करना चाहिए, इससे जीव की सदगति होगी। आत्मा का वास्तविक भोजन यही, और यही प्रचार होना चाहिए। नहीं तो आज चारों तरफ देखिए असुर वृत्ति फैल रही है, मैवादी लोग भ्रमण कर रहे हैं, भगवान का प्रचार प्रसार नहीं, स्वयं भगवान बन करके अपनी पूजा करा रहे हैं। इसलिए प्रचार बहुत जरूरत है, और प्रचार प्रसार से हमारे समाज की बुराइयां दूर होती हैं। इसलिए हम सभी को प्रचार प्रसार कर करके एक दूसरे को भ्रम को दूर करना चाहिए, और वैष्णवी और वैष्णव बना करके जगत का कल्याण करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।